मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 12 नवंबर 2015 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक 17 दिन के लंबे गैप के बाद आप लोगों से पहली बार 10 तारीख को मुलाकात हुई थी और इसके बाद 11 तारीख को चूंकि दीपावली आ गई थी उस दिन मैंने फिर आप लोगों से माफी मांगी थी और कल दीपावली का त्यौहार आप सबने पूरे उल्लास के साथ संपन्न किया है और आज 12 नवंबर से यह ऑडियो गाइडेंस फिर से शुरू हो रहा है और आप ये समझ लें कि अब यह सिलसिला पुराने ही पैटर्न पर आ गया है। कल भी आपको ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल रहेगा, सैटरडे को आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स और योजना और कुरुक्षेत्र की आर्टिकल्स मिलेंगे और संडे के गैप के बाद मंडे से हम लोग उसी क्रम में आ जाएंगे। मित्रों, ये बताने का मेरा पर्पज खासकर ये है कि अभी मुझे मालूम है कि दीपावली के त्यौहार के लिए बहुत से स्टूडेंट जो मेरे प्रिय श्रोता भी हैं अपने घरों को जाते हैं फिर लौटते हैं और काफी वो एक तरह से कह लीजिए उनकी व्यवस्था में डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसीलिए फिलहाल मैं अभी उन स्टूडेंट्स के नाम फिर से नहीं ले रहा हूं जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और विधिवत तरीके से इन सभी के नाम जो खासकर इस दौरान जब से ऑडियो नहीं आ रहा है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उन सभी के नामों की घोषणा मैं सोमवार को करूंगा और सोमवार को एकेडमी की तरफ से उन सबका स्वागत करूंगा। मित्रों, अब मैं एक बार आप सबको फिर से दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। शुभकामनाएं मैं आप लोगों को 10 तारीख को दे चुका हूं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। फ्रेंड्स, बेहतर होगा कि आज के लाइफ मैनेजमेंट में हम थोड़ा सा ये जो उत्सव और ये जो पर्व और त्यौहार आते हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि हमारे जीवन में इन सब का अंततः क्या रोल है, ये क्यों बनाए गए हैं। एक बड़ी अद्भुत बात है, अगर आप पूरे के पूरे दुनिया के सिनेरियो को देखें तो आपको ये जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि जो सबसे ज्यादा जो उत्सव पर्व त्यौहार चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो कृषि से संबंधित हो, कृषि के आधार पर भी बहुत से हमारे यहाँ पर्व और त्यौहार मनाए गए हैं या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर हो, जैसे अभी कल भाई दूज है, ये व्यक्तिगत संबंधों पर है। रक्षाबंधन का त्यौहार ये व्यक्तिगत संबंधों पर है। तो इस तरह के जितने त्यौहार हैं सब इनकी सबसे बड़ी संख्या आपको ये सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय देशों में है। इसका कारण क्या है? भारत उष्णकटिबंधीय देशों में आता है और ऊपर का हिस्सा हमारा शीतोष्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि हम उष्ण के ज्यादा करीब हैं और शीत से काफी दूर हैं इसीलिए हमारा बहुत बड़ा हिस्सा एक तरीके से कह लीजिए कि जो रिप्रेजेंट करता है ज्योग्राफिकली वो उष्ण कटिबंध को रिप्रेजेंट करता है। और खासकर जब हम साउथ की तरफ चलने लगते हैं तो आपने देखा है कि पूरा का पूरा डाउन साउथ का जो हिस्सा है अगर आप उस त्रिकोण को ले लें तो उसकी एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि जो साउथ ईस्ट है बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है और जो हमारा साउथ वेस्ट है वो अरबियन सी से घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है, और जो साउथ है वो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, यानी कि नीचे तीन तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं। यह हमारा वो हिस्सा है कि जो थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि चूंकि ये समुद्री सीमा है तो इसीलिए यहां की जलवायु बड़े अलग तरीके की हो जाती है। अगर हम थोड़े से अपने नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को छोड़ दें और उधर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाले हिस्से को जो खासकर हिमालय के क्लाइमेट से प्रभावित है तो आप पाएंगे कि भारत का अधिकांश जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला है। मित्रों, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि यहां मौसम में काफी परिवर्तन होता है। वेदर जो है वो काफी ऋतु में कहना चाहिए कि ऋतु में काफी बदलती रहती हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहां जो मूल तीन ऋतुएं हैं और अगर उसमें वसंत और शरद इन सबको जोड़ दिया जाए तो हमने 6 ऋतुओं का विधान कर रखा है। ये भारत को प्रकृति के द्वारा या कह लीजिए कि पूरे के पूरे उष्णकटिबंधीय देशों को प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अद्भुत वरदान है। मित्रों, इसका सिंपल सा असर ये होगा ही कि जैसे जैसे ऋतुएं बदलेंगी, ऋतुओं के अनुकूल हमारे मनोभाव बदलते हैं, ऋतुओं के अनुकूल हमारा वेजिटेशन बदलता है और क्रॉप बदलती है। हमारे यहाँ खरीफ होती है, फिर हमारे यहाँ रबी फसल भी होती है, और बीच का जो थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा आता है जिसको हम जायद फसलों का नाम देते हैं, यानी कि तीन तरह की फसलें एक ही जमीन पर ऑलमोस्ट हम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जो क्रॉप बदलते हैं तो क्रॉप की वेराइटीज भी बदलती हैं। अगर हम किसी सीजन में गेहूं लगा रहे हैं तो दूसरे सीजन में हम धान की खेती कर रहे हैं। कभी एक ऐसा मौसम आता है वसंत का कि पूरी की पूरी धरती फूलों से जगमगा उठती है, लहलहा उठती है, मतलब खिल उठती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मौसम है, जो बाहर के अलग तरह का की जो ऋतुएं आती हैं और उन ऋतुओं के पैरेलल समानांतर जो फसलें बदलती हैं, दोस्तों हम सब प्रकृति के ही हिस्से हैं, और जब प्रकृति बदलती है तो हमारा मनोभाव भी बदलता है। और जाहिर है कि जब हमारा मनोभाव बदलेगा तो हम सब कुछ ऐसा चाहेंगे कि हम अपने बदले हुए मनोभाव को व्यक्त करें। प्रकृति ने हमें यह दिया है तो हमें भी लगता है कि हम भी प्रकृति को बदले में कुछ दें। देना तो क्या है मित्रों, फिर एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि हम अलग अलग तरीके से प्रकृति को वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। कभी हम रंगों से होली में स्वागत करते हैं, कभी हम दीपक से आपके दीपावली में स्वागत करते हैं, तो कभी और ढेर सारे तरीके हैं। और सच पूछिए तो इन सारे के सारे उत्सव और पर्वों के जरिए कहीं ना कहीं हम प्रकृति की ही आराधना कर रहे होते हैं, प्रकृति के प्रति ही हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं। इसीलिए मित्रों कि उष्णकटिबंधीय देशों में सबसे ज्यादा पर्व, सबसे ज्यादा उत्सव और सबसे ज्यादा आपको त्यौहार देखने को मिलेंगे, मनाने को मिलेंगे। मित्रों इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि हमारे इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, जिसमें आप थोड़ा सा एशिया को भी आप एक्सटेंड कर लें, तो इसकी जो फिलॉसफी रही है वो काफी कुछ एक जैसी रही है। एक जैसी रही है कहने का मतलब है कि बहुत ही आत्मवादी हमारा दर्शन रहा है। मैं हमारा दर्शन का मतलब केवल भारत की बात नहीं कह रहा हूं, मतलब पूरे के पूरे उस ज्योग्राफिकल एरियाज की बात कर रहा हूं। आत्मवादी दर्शन का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं भावुक लोग हैं, कहीं ना कहीं हम आत्मा को महत्व देते हैं, देह को अस्वीकार करते हैं, भौतिक उपलब्धियों को उतनी तरजीह नहीं देते और एक तरह से आध्यात्मिक जीवन को जीवन का सार मानते हैं। और लगातार हमारी कोशिश होती है, हमारी छटपटाहट होती है कि किस तरह से हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर सकें। अब सवाल यह है कि इसको हम हासिल करेंगे कैसे, ये कैसे संभव है कि हम अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करें। मित्रों इसके लिए हमारे यहां उत्सव और पर्वों का विधान किया गया है। आपने देखा है कि हमारे तक ज्यादातर उत्सव, हमारे ज्यादातर पर्व कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दिए गए हैं। ये बात अलग है कि पुराने जमाने के लोगों को समझाने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता था ताकि वो उस बात का अनुसरण करें, क्योंकि व्यक्ति धर्म से डरता भी था और धर्म से प्रेम भी करता था, तो आचरण ही एक तरह से व्यक्ति का धर्म था, या कह लीजिए कि धर्म को ही व्यक्ति ने अपना आचरण बना लिया था। इसीलिए हर पर्व के साथ, हर उत्सव के साथ हमने कहीं ना कहीं धर्म को भी जोड़ दिया है। और ये धर्म जो है, देखें कि किस तरीके से हमारे आध्यात्मिकता से रचा बसा है। ये बात अलग है कि आज हम जिस रूप में धर्म को देखते, जानते और समझते हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं वैमनस्य और तनाव और दुराव और छिपाव और ईर्ष्या और पता नहीं किन किन चीजों का कारण बनता चला जा रहा है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, अदरवाइज तो धर्म बेसिकली धारण करने योग्य गुण हुआ करते थे और यही धर्म की परिभाषा भी है। तो ये बेसिकली जो धर्म है, सच पूछे तो आध्यात्मिकता की सीढ़ी है। धर्म अपने आप में आध्यात्मिकता नहीं है। हम आध्यात्मिकता को कैसे हासिल करें उसके लिए धर्म है। तो दोस्तों ये जो हमारे यहां विधान किया गया धर्म का, आध्यात्मिकता का, और उसको डाल दिया गया पर्व और उत्सव में, आप देखिए एक और भी आपको अद्भुत बात मिलेगी कि ज्यादातर पर्व और उत्सव सामूहिकता के साथ मनाए जाते हैं, इंडिविजुअल नहीं है। ये बात अलग है कि आप व्रत और त्यौहार भले ही आप इंडिविजुअली कर लें, लेकिन उनको जो सेलिब्रेट किया जाता है, जब उनको मनाया जाता है तो इकट्ठे मनाया जाता है। कुछ ही दिनों के बाद अभी जब छठ के त्यौहार आएंगे, आप देखिए जो बिहार में तो बहुत ही पवित्र और उल्लास के भाव के साथ मनाया जाता है कि किस तरह से ग्रुप में लोग इकट्ठे होते हैं। दीपावली में भी भले ही आप अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि इसके बाद किस तरीके से आप गांव नगर के अपने परिचितों से मिलने जाते हैं, जाकर के उन्हें बधाई देते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और यहां तक कि कहां कहां रहने वाले लोग कोशिश करते हैं कि दिवाली के दिन तो अपने घर पहुंच जाएं। हालांकि पहुंचने के बाद होना जाना कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अपने लोगों से मिल रहे हैं तो इससे अधिक और करना भी क्या है। कितने दिन से बिछड़े रहते हैं और एक अवसर आता है, एक ऐसा बहाना मिलता है, बहाना ही कह लीजिए, कि हम अपने लोगों से जाकर मिलेंगे। ये सामूहिकता है। और मित्रों, ये पूरे के पूरे इस क्षेत्र के एशिया के विशाल महाद्वीप की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस सामूहिकता की भावना ने, लोगों से मिलने जुलने की प्रवृत्ति ने, लोगों को लोगों से जुड़ने की आदत ने, लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने के भाव ने, सहनशीलता के गुण ने उन्हें न जाने कितने तरह की मानसिक बीमारियों से बचा कर रखा है। जो सामूहिकता का जीवन जिएंगे वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। मैं एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात नहीं कहता, लेकिन जहां तक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात है, सामूहिकता का जीवन जीने वाले लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। और नो डाउट कि जो कृषि संस्कृति थी वो कृषि संस्कृति तो निश्चित रूप से सामूहिकता की ही संस्कृति थी। और दोस्तों, फिर जब लगातार कुछ दिनों तक जमकर काम करने के बाद जब हम उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव मनाने के बाद जो हम में एक नई ऊर्जा आती है उसका तो फिर कहना ही क्या है। ठीक वैसे ही जैसे कि गर्मी के बाद पेड़ों में नई नई कोपलें फूटने लगती हैं, कहीं कत्थई रंग की कोपलें तो कहीं हरे रंग की कोपलें। ये कोपलों का फूटना एक तरीके से उन वृक्षों में जो ऊर्जा जमा है उसकी अभिव्यक्ति है। और ऐसा उत्सवों के बाद हमारे साथ भी होता है, और अगर नहीं होता है तो यह होना ही चाहिए। उत्सव कितना बड़ा आंतरिक विश्राम देते हैं, मतलब कितना बड़ा रिलैक्स करने का माध्यम है, हम सही पूछिए तो ऊपरी तौर पर नहीं समझ पाते। यह बात अलग है कि उत्सवों को हमने इस तरीके से बना दिया है, बाजार में खरीदारी करनी है, महिलाओं की ज्यादातर त्यौहार तो किचन में ही मनते हैं, तो हम उससे ज्यादा अपने आप को थका देते हैं। वो एक अलग मामला है जो हमने किया है। उत्सव कभी भी इस तरह के डिमांड नहीं करते, इनको बड़ी सादगी से भी मनाया जा सकता है, इनको बड़े उल्लास के साथ भी मनाया जा सकता है। उत्सव का मतलब खाना पीना नहीं है, उत्सव का मतलब सच पूछिए तो गाना बजाना है। अगर मन खुश है तो वो चुप रहने में भी गुनगुनाएगा, मौन रहने पर भी गाएगा। तो मित्रों, ये मैंने खासकर उत्सव पर्व आदि के बारे में कुछ बातें आप सबसे शेयर की हैं, और मुझे यकीन है कि शायद मेरी इन बातों से आपको निबंध में लिखने के लिए कुछ नया मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि शायद सोचने के लिए ही कुछ नई बात मिल जाए, या अगर ये दोनों ही नहीं है तो कोई बात नहीं, उत्सव को मनाने का एक नया अंदाज बन जाए, एक नई दृष्टि मिल जाए कि हमें आगे के उत्सव को कैसे मनाया जाना चाहिए, और एक बार का मनाया गया उत्सव कैसे हमारे अंदर आंतरिक जीवन का उत्सव बन जाता है, हमारे अंदर का उत्साह बन जाता है। और यह तब तक बना रहता है जब तक कि कोई दूसरा उत्सव हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता है और हम उसमें जाकर शामिल नहीं हो जाते। और इस तरह से मित्रों, ये जो हमारा जीवन है कहीं ना कहीं उत्सवों का एक न खत्म होने वाला खूबसूरत सिलसिला बन जाता है। तो मित्रों, आज लाइफ मैनेजमेंट के चरण में इतना ही। अब मैं आता हूं कल के आकाशवाणी के समाचार के बारे में, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चूंकि दीपावली के दिन छुट्टी रहती है, इसीलिए आज कोई भी अखबार मेरे पास नहीं आया है, इसीलिए प्रेस क्लिपिंग्स आप लोगों को आज नॉलेज सेंटर में अवेलेबल नहीं होगी, ये केवल आपको ये ऑडियो ही सुनने को मिलेगा। लेकिन आज जो मैं आपसे आकाशवाणी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो तो डेफिनेटली कल की ही न्यूज पर बेस्ड है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कल के अखबारों में जो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपसे जरूर इस सेक्शन में शेयर करूंगा, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में सच पूछिए तो केवल 3 छोटी छोटी खबरें थी, चूंकि अभी वो मेच्योर उतनी नहीं है तो इसलिए उन पर ज्यादा बातें हम नहीं कर सकते। एक खबर आपने सुनी जो कि बिहार में जो अभी चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंथन में लगी हुई है कि आखिर में हार का कारण क्या है। इन सब को लेकर के एक खबर थी जो सिविल सर्विस के लिहाज से मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जब चुनाव के बारे में जब विश्लेषण आएंगे कि उसमें जाति कास्ट सिस्टम का कितना रोल था, या कह लीजिए कि डेवलपमेंट के नारे को पब्लिक ने क्यों अस्वीकार कर दिया, ये जब कहीं हमारे हाथ में कुछ इस तरह के जब गहरे एनालिसिस हमारी पकड़ में आएंगे, तो वो एक प्रकार से भारत के का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो किस तरीके से बदल रहा है, लोग अपने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी किस तरीके से सोचने लगे हैं, या जो न्यू जनरेशन है, जो नए मतदाता हैं यंग, वो अब राजनीति को किस दृष्टि से देखते हैं, इन सब के बारे में हमें कुछ तथ्य मिलेंगे, वो बाद की बात होगी। दूसरी जो खबर थी फ्रेंड्स, वो देखा आपने कि जो श्रीलंका सरकार है उसने कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहा किया है। ये राजनीतिक बंदी वे थे जो आतंकवादी निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए थे, और ऐसे गिरफ्तार किए गए बंदियों को अदालत में पेश नहीं किया जाता जो वहां का नियम रहा होगा। तो ये श्रीलंका के सरकार की तरफ से किया गया एक बहुत बहुत अच्छा उठाया गया कदम है कि दीपावली के दिन उन्होंने इस तरह के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया है। और आपको मालूम है कि ठीक इससे एक दिन पहले श्रीलंका सरकार ने, क्या दो दिन पहले, काफी मछुआरों को भी इसी तरह से रिहा किया था। नो डाउट कि जब से श्रीलंका में नई सरकार आई है, भारत और श्रीलंका के संबंध काफी घनिष्ठ होते जा रहे हैं, काफी अच्छे होते जा रहे हैं। और आपको ये मालूम ही होगा कि इससे पहले जो श्रीलंका की सरकार थी वो प्रो चाइना थी, चाइना के साथ उसके काफी घनिष्ठ संबंध थे और भारत एक तरीके से थोड़ा सा सेकेंडरी पोजिशन में आ गया था, लेकिन चाइना के साथ श्रीलंका जो अपने संबंध बढ़ा रहा था उसको लेकर के वहां की जनता संतुष्ट नहीं थी। और एक तरीके से जो उस सरकार की जो पराजय हुई है चुनाव में उसके पीछे कहा जाता है कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरी जो खबर थी फ्रेंड्स, वो छोटी सी खबर है, उसकी चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे, और वो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 3 दिन की ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। न्यूज में ही ये बात थी कि G20 जो ग्रुप 20 जो है उसमें ब्रिटेन भी है, भारत भी है, और उसमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया कि जो G20 जो देश है उसमें जो ब्रिटेन है वो भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। ये एक कंटेंट है जो अब जब हम न्यूज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो वैसे ही एक तरीके से मौजूद हो जाता है, और बाद में ये चीजें, ये जो कंटेंट है वो हमें एनरिच करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल की अखबारों पर, या कह लीजिए कि परसों की रेडियो की खबर पर। फ्रेंड्स, इस बीच में एक बहुत बहुत बड़ी घटना घटी है जो हमारे पड़ोसी देश में ही घटी है, और वो घटना है म्यांमार की, जिसे हम बर्मा कहते हैं। बर्मा में अभी चुनाव हुए और चुनाव की खबरें आपको मालूम है, अखबारों में भी ये प्रोमिनेंटली खबर आ रही है। इसके बारे में अब एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स डेफिनेटली आने शुरू होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का तो एडिटोरियल कमेंट भी आ गया है। उस अब थोड़ी सी म्यांमार की पृष्ठभूमि आप देखिए, बेसिकली क्या है कि म्यांमार में 1962 से ही 2011 तक आप कह लीजिए कि इनफैक्ट आर्मी रूल है, सेना का शासन रहा है। आपको शायद ये मालूम होगा कि पहले जब ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर शासन कर रहे थे तो म्यांमार भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में था, और बाद में भारत के आसपास ही म्यांमार को भी ब्रिटेन से आजादी मिली है। 1962 से लेकर के 2011 तक वहां सेना का शासन रहा, और खासकर 2010 में चुनाव हुए थे वहां, और उसमें जो सेना का जिस पार्टी को समर्थन था, जिसे USDP कहते हैं, उसने फिर सत्ता संभाली। उसका एक कारण यह भी था कि विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया था, तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में म्यांमार में जो पार्टी थी, जो सेना समर्थित पार्टी थी, उसी को सत्ता मिली। तो सच पूछिए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक इस चुनाव से पहले तक म्यांमार एक तरीके से सेना के नियंत्रण में ही रहा, लेकिन एक बात जो होने लगी थी 10-11 के आसपास ही, जब से चुनाव हुए और एक तरह से चुनी हुई सरकार म्यांमार में आई, तो उसने चूंकि पूरी के पूरी दुनिया का सिनेरियो बदल गया था, तो उस सरकार के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो म्यांमार को पूरी दुनिया से काट कर अलग थलग रख सके। और पूरी दुनिया का, खासकर जो वेस्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने म्यांमार पर बहुत से प्रतिबंध भी लगा रखे थे, क्योंकि म्यांमार में सेना का शासन था और वहां की जो एक लीडर थी, जो बहुत ही पॉपुलर लीडर थी, आंग सान सू की, उनको सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। बहुत लंबे समय तक उनको जेल में भी बंद रखा, और आपको मैंने इससे पहले के ऑडियो में बताया था कि इन्हें शांति का नोबल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन 2010-11 में हुए, जब चुनाव हुए, तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट आई, उसे आप क्वासी सिविलियन गवर्नमेंट कह लीजिए, अर्ध नागरिक सरकार कह लीजिए, हालांकि वो सेना के समर्थन से ही आई थी, तो उसने क्या हुआ कि म्यांमार में कुछ रिफॉर्म शुरू किए, ताकि इसका जो आइसोलेशन है पूरी दुनिया से, जो म्यांमार कटा हुआ है, उसका वो आइसोलेशन कम हो सके। अब उसी समय ढेर सारे कदम उस सरकार ने उठाए, जिसमें सू की को उन्होंने जो हाउस अरेस्ट जो थी, नजरबंद थी अपने घर में, उनको उन्होंने मुक्त कर दिया। बहुत से दूसरे भी जो राजनीतिक बंदी थे उनको भी उन्होंने मुक्त किया। मीडिया पर जबरदस्त रूप से प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको उन्होंने थोड़ा सा ढीला किया। यहां तक कि जो लेबर्स थे, उनको अपने यूनियंस बनाने की छूट दे दी, और कुछ सेक्टर्स, खासकर जैसे टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर, उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन भी किया। तो डेफिनेटली जब ये थोड़ी सी ओपननेस आई, तो म्यांमार के प्रति लोगों की थोड़ी सी रुचि बढ़ी, और ये लगने लगा कि शायद म्यांमार एक तरीके से सही मायने में उस लोकतांत्रिक, स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, फिर वहां का जो संविधान जो है म्यांमार का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन एक तरीके से सेना ने ही, आप कह लीजिए, कहा जाता है कि वहां का संविधान बनाया, और उस संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि सेना की पकड़ म्यांमार की राजनीति पर लगातार बनी रहे। जैसे 2-3 प्रोविजन सुन लीजिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला तो ये है कि वहां पार्लियामेंट की जितनी भी सीट है, उसमें से 25% सीट्स सेना के लिए आरक्षित है। 25% सीट पर सेना ही आएगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर 25% पर सेना है, और अगर कोई संविधान संशोधन करना चाह रहा है, जो पार्टी है लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई है, तो जब तक उसे सेना का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक वो संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती, और यहां तक कि उसको दूसरी चीजों में भी काफी दिक्कत होगी। अगर उसे परिवर्तन करना है, तो उसे सेना का समर्थन चाहिए। यानी कि पहली बात तो यह कि अभी भी जो सरकार आंग सान की अगर आती है, सू की की, तो उन्हें सेना के साथ मिलकर ही काम करना होगा। और उसमें गलत भी इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि सेना हमेशा विरोध में ही होती है। अगर सेना को कुछ ऐसा लगता है कि शायद इससे देश का हित होगा, तो साथ भी वो देगी, क्योंकि आफ्टर ऑल सेना को भी कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना ही होता है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो हमेशा सेना के पास ही रहनी है। जैसे आप देखिए, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और सीमा सुरक्षा, ये जो मंत्रालय हैं, ये सेना के पास ही रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि सेना की पकड़ कितनी अधिक होगी, और साथ ही राष्ट्रीय, उनकी जो नेशनल इकोनॉमी है, उसके बहुत बड़े हिस्से पर भी सेना का नियंत्रण रहेगा। कहने का मतलब यह है कि भले ही अभी जो दूसरी जो सरकार जो आई है, अभी जो आई है सू की जो पार्टी है, उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये नाम थोड़ा सा आप रट लीजिएगा तो आपको काम आएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये चुन करके आई है, बहुत अधिक बहुमति से मिला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो संविधान है उसके तहत इसे सेना के साथ ही मिलकर काम करना होगा। फ्रेंड्स, इसका एक और भी पक्ष है, वो ये कि जो सू की है, आंग सान सू की, ये राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगी। उसका कारण ये है कि वहां के संविधान के अनुसार जिनके बच्चे, जिन्होंने म्यांमार से बाहर किसी विदेशी से शादी की है, विदेशी नागरिक से शादी की है, तो वो राष्ट्रपति के लिए खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी। लेकिन इन्होंने कहा है कि एक सामान्य पॉलिटिशियन के रूप में ही काम करना ये पसंद करेंगी, क्योंकि पार्टी पर इनका दबदबा है, सच पूछे तो इन्हीं की ही पार्टी है, तो उसमें इन्हें मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई ज्यादा दिक्कत होगी। मित्रों, अब हम आते हैं थोड़े से भारत के साथ संबंधों को लेकर के। बहुत थोड़ी सी एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इससे पहले कि आप म्यांमार के बारे में कुछ ज्यादा जाने पढ़ें, आपको चाहिए कि आप एटलस निकालें या नक्शे पर जाएं और देखें कि म्यांमार भारत के किस सीमा से है और कहां कहां उसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। आप देखेंगे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो बिल्कुल ईस्ट का पार्ट है, जिसमें मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, आप देखेंगे कि ये म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के चार स्टेट म्यांमार की सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि म्यांमार भारत के लिए, खासकर जहां तक नागा विद्रोहियों का सवाल है, नागा जो इंसर्जेंट्स हैं, वो जो घुस करके हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौती देते हैं, ये माना जाता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत कुछ म्यांमार में हैं। वो सीमा म्यांमार में उन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं और वो वहां से आते हैं, इधर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और फिर वहां लौट जाते हैं। बीच में कुछ ऐसी घटना भी हुई थी जबकि भारतीय सेना ने म्यांमार में घुस करके उनको जवाब दिया था। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से, खासकर नॉर्थ ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी, भारत को म्यांमार सरकार की मदद की जरूरत होगी। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहली बात तो यह है कि जो आंग सान सू की हैं, इनका दिल्ली से संबंध रहा है, दिल्ली में आई रही हैं, ये बहुत समय तक रही हैं, भारत इनका समर्थन भी लगातार करता रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब पूरे के पूरे पश्चिमी देशों ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगा रखा था, उस समय भी भारत का संबंध म्यांमार से बना हुआ था। भारत ने कभी भी म्यांमार की उस तरीके से उपेक्षा नहीं की है। तो ये जो दो तथ्य हैं, एक तो आंग सू की के साथ भारत के निजी रिश्ते, और दूसरा से जब म्यांमार सैन्य शासन के अंतर्गत था तब भी भारत ने उसकी अनदेखी नहीं की, और डेफिनेटली अब जो तीसरा है वो यह कि चूंकि वहां एक लोकतांत्रिक सरकार आ गई है और भारत लोकतंत्र का लगातार समर्थक रहा है, तो और भारत स्वयं भी चूंकि लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में दो लोकतांत्रिक देशों के बीच में जब बातचीत होती है तो वो ज्यादा सेम वेवलेंथ में हो पाती है। तो ये तथ्य कुछ ऐसे हैं जो भारत और म्यांमार के संबंधों को बहुत मजबूत बना सकते हैं, बहुत ही संभावनाओं से भरी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, और लग रहा है कि शायद नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है, वहां जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों पर काफी कुछ नियंत्रण पाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, दो बातें अभी खासकर इंटरनेशनल अफेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे तरफ अगर हम उत्तर भारत को ले लें तो वहां नेपाल सीमा पर घटनाएं घट रही हैं, खासकर मधेशियों को लेकर के, और नॉर्थ ईस्ट में अभी म्यांमार में चुनाव हुए हैं। ये दोनों भारत की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेशंस हैं। नेपाल के बारे में तो हम लोग लगातार बात भी करते रहे हैं, और आपको मालूम है कि वहां जो मधेशियों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के भारत थोड़ा चिंतित भी है, क्योंकि अभी जो नेपाल में सरकार है वहां कम्युनिस्टों का काफी दबदबा है सरकार में, और चीन की भी सीमा, एक बहुत बड़ी सीमा नेपाल से लगती है, और चीन भी नेपाल में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है, और अभी उसे एक ऐसा मौका मिल गया है जब वो भारत के बदले ज्यादा माइलेज ले सकता है, आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में मित्रों, नेपाल के साथ आप देख रहे हैं कि कुछ समय से भारत के संबंध थोड़े से कुछ कड़वे से होते जा रहे हैं। पिछले ऑडियो में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से भारत ने यूएनओ के राष्ट्रीय मानवाधिकार के सामने ये प्रश्न उठाया भी कि किस तरह से वहां के जो मधेशिये हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस रूप में यह एक सच पूछे तो चिंता की बात है। फ्रेंड्स, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार उनकी कोशिश है कि किस तरीके से हम अपने पड़ोसियों के ज्यादा निकट आ सकें, पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकें। ऐसी स्थिति में अभी नेपाल का जो मामला है वो थोड़ा सा चिंता पैदा करने वाला है, लेकिन आगे देखते हैं कि स्थितियां किस तरीके से बदलती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां केवल ये है कि अभी फिलहाल म्यांमार और नेपाल दो ऐसे महत्वपूर्ण हमारे पड़ोसी देश हैं जिन पर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अभी इस पर जो बाद में आर्टिकल्स आएंगे, जो भी एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, उनको आधार बना करके फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। मित्रों, एक परसों की जो खबर है छोटी सी और अखबारों में भी उसे काफी जगह मिली है, वो है कि भारत सरकार ने एफडीआई के लिए काफी क्षेत्रों को ओपन किया है और उसमें एफडीआई का प्रतिशत भी बढ़ाया है। उसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो उससे थोड़ी सी आपको एक अपडेट हो जाएंगे और एक झलक मिल जाएगी कि भारत किस तरीके से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो मित्रों, अब विशेष कुछ चर्चा करने के लिए हम लोगों के पास नहीं है, तो अब आज के ऑडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।